ओम शांति। बाबा हम बच्चों को बार बार यही कह रहे हैं, बच्चे ज्ञान गुण और शक्तियों को जो बाबा से आपने अनेक भंडारे भरपूर किए हैं उन्हें सबको बांटना है। हमें कैसे बांटना है इस विषय पर क्लास कराएंगी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन जी। हम सभी तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। 25 वर्षों से ईश्वरीय सेवा में समर्पित आप बाबा के घर अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप एक कुशल राजयोग शिक्षिका हैं, संयुक्त संपादिका ज्ञानामृत मासिक पत्रिका व सह संपादिका त्रैमासिक हरियाली पत्रिका। आपने अनेक आध्यात्मिक अभियान जैसे भारत एकता, युवा साइकिल अभियान, शिव संदेश रथ यात्रा अभियान, महिला सशक्तिकरण आध्यात्मिक अभियान, मूल्यनिष्ठ मीडिया अभियान, संपूर्ण ग्राम विकास अभियान इत्यादि के द्वारा भारत के विभिन्न प्रांतों तथा नेपाल में भी ईश्वरीय सेवाएं की है। आपने अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी विभिन्न विषयों पर संबोधित किया। बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक विपत्तियों में राहत शिविर लगाने का आपको विशेष अनुभव है। ईश्वरी विश्वविद्यालय के रिफ्रेशर कोर्स तथा विभिन्न विभागों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपका विशेष योगदान रहता है। आप बहुत अच्छी लेखिका हैं, आपने इनके लेख पढ़े होंगे ज्ञानामृत पत्रिका में, हरियाली में, जो बहुत ही परिवर्तनकारी होते हैं। तनाव मुक्त जीवन, व्यसन मुक्त जीवन, क्रोध मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन, स्वप्रबंधन, नेतृत्व कला, व्यक्तित्व विकास, माइंड मैनेजमेंट आदि विषयों पर आप वक्तव्य देती हैं। विधायक क्लब सभागार, बोकारो स्टील प्लांट, यूनिवर्सिटी कैंपस, लिबर्टी शूज, कोल माइंस, वैज्ञानिक शोध संस्थान, कॉलेज कैंपस, बैंक, इंडस्ट्री, क्रिभको, टीटीसी, रेलवे इत्यादि अनेक स्थानों पर आपने प्रवचन दिए हैं और मधुबन में भी आपकी बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं। और अभी भी आप सुनेंगे कि हम ज्ञान गुण और शक्तियों को कैसे बांटेंगे आदरणीय उर्मिला बहन जी।
ओम शांति। प्यारे बाबा की 31/12 की मुरली हमने सुनी। बाबा ने बच्चों को काम दिया कि जो भी मिले उसको नई दुनिया की सौगात तो देनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ आप बच्चों के पास जो इतना ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, वो सौगात भी बांटो, क्योंकि ये सौगात दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। आपके पास ये नई चीजें हैं। तो प्यारे बाबा ने हम बच्चों को, जैसे ही हमारा इस ईश्वरीय ज्ञान में जन्म हुआ, अनेक जन्म की सौगातें दी। बाबा कहते हैं, बच्चे ये सब सौगातें आपके अमूल्य खजाने हैं। और बाबा ये भी कहते हैं कि ये ऐसे अमूल्य खजाने हैं जिनको आप जितना बांटेंगे कम नहीं होंगे, बांटने से बढ़ते जाएंगे। बाबा ने इसी सीजन की जो पहली मुरली चलाई उसमें कहा था कि ज्ञान आत्मा को बंधन मुक्त बनाता है। बाबा ये भी कहती हैं कि वर्तमान जीवन में जो दुख आए उनका कारण एकज भूल है। एकज भूल का अर्थ एक भूल से पैदा हुई अनेक भूलें, उसको कहते हैं एकज भूल। एक माना एक, जय माना जन्मी, एक भूल से जन्मी हुई अनेक भूलें। तो वो एक भूल कौन सी है? वो वास्तव में भूल यही है कि हमने मेरे को मैं मान लिया, ये शरीर मेरा है, इसके बजाय हम ये मानने लगे कि ये शरीर मैं हूँ। प्रकृति और पुरुष का खेल है, लेकिन हमने पुरुष को भुला दिया और प्रकृति को ही मैं मान लिया। यही सबसे बड़ा अज्ञान है, और अपने आप को पुरुष मानना और इस प्रकृति को अपने अधीन चलाना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। तो जब ज्ञान खजाना भूल गया, अज्ञान जीवन में आ गया, तो बंधनों में बंध गए। और बाबा कहते हैं कि ज्ञान आत्मा को बंधन से मुक्त करता है। तो कितने बंधन आत्मा के ऊपर पड़ गए जब हम ज्ञान खजाने को भूल गए। लौकिक दुनिया में जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको जेल में डालते हैं। तो जेल में क्या होता है, उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, वो मर्जी का खा पी नहीं सकता, जहां चाहे वहां जा नहीं सकता, किसी से मनपसंद मन बहलाव नहीं कर सकता, मनपसंद पढ़ नहीं सकता, हर बात में उसके ऊपर बंधन होता है। अब देखा जाए तो घर भी उन्हीं ईंट पत्थरों से बना होता है, जेल भी ईंट पत्थरों से बनी होती है, लेकिन दोनों स्थानों में मनुष्य की मानसिकता अलग अलग होती है। इसी प्रकार से जब हम आत्मा की स्मृति में होते हैं तब भी देह में तो रहते हैं, और जब देह की स्मृति में होते हैं तब भी देह में तो रहते हैं, लेकिन दोनों अवस्थाओं में हमारी स्थिति में बहुत अंतर होता है। जब देह अभिमान में है तो बंधन में है, जहां मन को लगाना चाहते हैं वहां लगता नहीं है, और जहां से हटाना चाहते हैं वहां से हटता नहीं है। जिस समय सोना चाहते हैं उस समय नींद नहीं आती, और जब जागना चाहते हैं तो आंख नहीं खुलती। फिर हमारी आयु पर हमारा कोई वश नहीं, हमारे स्वभाव संस्कार पर भी हमारा कोई वश नहीं रहता। हमारा परिवार कैसा हो, काम धंधा कैसा हो, मौसम प्रकृति कैसी हो, सब चीजों के हम अधीन हो गए। तो एक भूल के कारण आत्मा कितने बंधनों में बंध गई, शरीर का भी बंधन, प्रकृति का भी बंधन, स्वभाव संस्कार का भी बंधन, कर्मों के भी बंधन। और जब ये भूल हमने सुधारी कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, पुरुष है, मालिक है, शरीर को चलाने वाले हैं, हम करावन हार हैं और ये कर्मेंद्रियां करण हार हैं, हम केवल साक्षी हैं, निमित्त है, कुछ समय के लिए इसमें मेहमान है। जब हमने भूल को सुधारा तो क्या हो गया, बंधन मुक्त बन गए, प्रकृति हमारे पर हावी नहीं होती, स्वभाव संस्कार हावी नहीं होता, पुराने कर्मों के बंधन बांधते नहीं है, रहते तो शरीर में ही है, लेकिन शरीर में रहते ही जैसे जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं। तो ज्ञान आत्मा को कर्म करने की कला सिखाता है, पुराने कर्म के बंधनों से मुक्त करता है, नए कर्म बंधन बनने नहीं देता है। ज्ञान को ही तीसरा नेत्र कहा जाता है, ज्ञान को ही अनमोल खजाना कहा जाता है। इसलिए जब हम दिवाली पर पूजा करते हैं तो लक्ष्मी के साथ साथ एक तरफ गणेश जी और दूसरी तरफ सरस्वती को भी दिखाते हैं, क्योंकि धन का भी अगर सुख भोगना है तो गणेश अर्थात बुद्धि चाहिए और सरस्वती अर्थात ज्ञान चाहिए। इन दोनों के बिना धन का भी सुख नहीं मिलेगा। तो ये ज्ञान धन सर्वोच्च धन है। किसी व्यक्ति के पास कितने भी हीरे मोती खजाने में पड़े हों, हीरे के व्यापारी लोग कागज में एक पुड़िया में हीरे रखते हैं उनसे पूछो भाई ये क्या है कागज में, तो कहेंगे भाई ये तो 10 लाख की पुड़िया है, 20 लाख की पुड़िया है, एक छोटी सी पुड़िया की कीमत इतनी, क्योंकि हीरे बहुत कीमती होते हैं। लेकिन ज्ञान की एक बात की कीमत कितनी, उनके एक हीरे की कीमत चलो 10 लाख 20 लाख कितनी है, लेकिन ज्ञान की एक बात की कीमत कितनी, एक सेंटेंस की कीमत कितनी। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान एक ऐसा पावरफुल बीज है जिससे सतयुग रूपी फल लगता है। कितना पावरफुल बीज है ये, जो इस सारी दुनिया को स्वर्ग में बदल देता है। एक बार बाबा ने एक मुरली में कहा था कि झुकना ही झूलना है, तो एक भाई मुरली सुनने गया हुआ था, और जब उसने ये मुरली सुनी तो उसको बाबा की ये बात बहुत अच्छी लगी, झुकना ही झूलना है। और वो इसका चिंतन करते करते, मनन करते करते अपने घर में आया, तो जैसे ही घर में पहुंचा, उसको सामने किसी रिश्तेदार का भेजा हुआ एक पोस्ट कार्ड दिखाई दिया। उसने उसको पढ़ा, रिश्तेदार ने पोस्ट कार्ड में एक समस्या लिखी हुई थी। समस्या ये थी कि उसका बेटा 6 महीने से उससे अलग रह रहा था उसी शहर में, और अब उसकी बच्ची की शादी थी, तो वो चाहता था कि बेटा घर आ जाए, लेकिन बुलाए कैसे, क्योंकि बोलचाल बंद थी, आना जाना बंद था। तो उसने पूछा था कि तुम राय लिखो, मैं क्या करूं, मेरा बच्चा मेरे साथ मिलकर के चले, उसके लिए मैं क्या करूं। तो ये तो बाबा की मुरली सुन के आया था। बाबा ने ऐसे तो बहुत सारी बातें कही थी मुरली में, लेकिन ये एक बात इसके दिल को लग गई थी और उसी का मनन कर रहा था। तो उसने एक पोस्ट कार्ड उठाया और उसके ऊपर लिखा झुकना ही झूलना है, बस एक ही लाइन, और वो उस आदमी को पोस्ट कर दिया। तो उस आदमी को जब वो पोस्ट कार्ड मिला और उसको पढ़ा, तो पूरा खाली है ऊपर नीचे आगे पीछे, बस उसमें केवल एक लाइन लिखी थी कि झुकना ही झूलना है। बहुत सारी लाइनें लिखते हैं तो कई बार बहुतों का प्रभाव इतना नहीं पड़ता, लेकिन एक ही लाइन होती है तो वो एक लाइन दिल को लग जाती है। तो उसको भी ये बात दिल को लग गई और वो एकदम उठा और अपने बच्चे के घर की तरफ चल पड़ा। दरवाजा खटखटाया, बच्चे ने दरवाजा खोला, तो उसने पूछा कि बेटा तेरी बहन की शादी में तू घर नहीं आएगा क्या। तो लड़का तो वास्तव में तैयार बैठा था, लेकिन वो केवल इसलिए नहीं जा रहा था कि कहीं मैं जाऊं और मेरी इंसल्ट ना हो जाए। तो उसके आगे मान अपमान की दीवार खड़ी थी, और बाप बच्चे को बुलाना चाहता था लेकिन झुकना नहीं चाहता था, उसके आगे ईगो की दीवार खड़ी थी, मैं बड़ा हूँ, मैं पहले कैसे झुकूं, उसको झुकना चाहिए। तो ज्ञान की एक लाइन ने क्या किया, मान अपमान की दीवार को भी तोड़ दिया, ईगो की दीवार को भी तोड़ दिया, और बाप और बच्चे का इतना प्यार से मिलन हुआ और इतना प्यार से उनकी बिगड़ी बात बन गई। फिर उसने पोस्ट कार्ड लिखा कि भी तुम्हारी एक लाइन ने तो कमाल कर दी, जो काम कोई पुलिस, कोई साधु सन्यासी महात्मा नहीं कर सकता था, गांव की पंचायत नहीं कर सकती थी, इतने सियाने समझदार लोग नहीं कर सकते थे, तुम्हारी एक लाइन ने तो बड़ा चमत्कार कर दिया, हमारा तो घर ही बन गया, हमारा तो प्यार वापस लौट आया। तो बाबा के ज्ञान की एक लाइन, अब आप इसकी कितनी कीमत कहेंगे, कहते हैं भाई एक हीरे की कीमत 1 लाख 2 लाख 5 लाख, अब ज्ञान की इस बात की कितनी कीमत आंकेंगे जिसने दो दिलों को मिला दिया या एक परिवार की सुख शांति वापस लौटा दी। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान बहुत बड़ा खजाना है, ये दौलत है, और इसी ज्ञान के आधार पर सतयुग में आपको इतने बड़े बड़े खजाने मिलेंगे, और बाबा रोज आपको इतने इतने ज्ञान रतन देकर के आपको माला माल बनाता है, क्योंकि ये प्योर ज्ञान है, निखालस सच्चा ज्ञान, बिना मिलावट वाला, डायरेक्ट भगवान के मुख से निकला हुआ। इसलिए जो निखालस चीज होती है ना, वो तो छोटी सी बहुत काम की होती है, और जो अशुद्ध चीज होती है वो ढेर सारी यूज करो तो भी उससे कोई काम नहीं होता। तो ज्ञान की तो एक बूंद ही जीवन को बदलने के लिए बहुत है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये दूसरों को दो, इस ज्ञान का दान करो, ज्ञान की बातें, लेकिन ज्ञान की वही बातें दूसरों को लगती हैं जो बातें हमें लगी हुई होती हैं। जिन बातों की हमें अनुभूति होती है और वो हम दूसरे को बताते हैं तो वो अनुभव जैसे हमारे से उस तक ट्रांसफर हो जाता है और वो उसकी भी अनुभूति बन जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान का अनुभव करो, ज्ञान का मनन करो, ज्ञान की एक एक बात की गहराई में जाओ। सुनना अलग चीज है लेकिन उसको समाना, धारण करना और उसका स्वरूप बनना वो अलग चीज है। सुना तो हमने भक्ति में भी बहुत, द्वापर युग में बहुत सुना, बहुत कथाएं सुनी लेकिन ना स्वरूप बने और ना मनन किया। लेकिन अभी हमको ज्ञान की एक एक बात का अनुभवी बनना है। बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त ही सफलता मूर्त। जब हम ज्ञान सुनाए तो ऐसे नहीं लगे कि ये सुना रही है लेकिन ऐसे लगे कि ये ज्ञान सुनाते सुनाते अपना अनुभव हमें अनुभव करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बाबा ने आप बच्चों को शक्तियों का बहुत बड़ा स्टॉक दिया है, खजाना दिया है। दुनिया के लोगों के पास शक्ति नहीं है, शक्तियों से वो खाली है। और इसलिए 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही शक्तियों का भी आपके पास अखुट भंडार है। जैसे हम कहते हैं कि जमीन के नीचे अनेक कीमती चीजें दबी पड़ी हैं। अगर हम ऊपर से देखें तो कुछ दिखाई नहीं देता है लेकिन उसको खोदना पड़ता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आत्मा भी सर्व शक्तियों का स्वरूप है लेकिन उनका अनुभव करना पड़ता है। जैसे किसी के पास बहुत सारा धन हो और वो उसको किसी कोने में रख दे और कभी भी ना देखे तो उसका होना और ना होना बराबर हो जाता है, वो गरीब ही नजर आएगा क्योंकि उस धन को ना देखता है, ना उसको उसका नशा है, ना उसका यूज करता है। तो ऐसे ही बाबा कहती हैं कि आत्मा में शक्तियां तो सब है लेकिन आत्मा ना तो उन शक्तियों को यूज करती है, ना उनको देखती है, ना उनका नशा करती है, नशा रखती है। तो क्या हो गया, होते हुए भी जैसे आत्मा शक्तिहीन हो गई और जब उनको देखती है, अनुभव करती है, उनका चिंतन करती है और उनको काम में लगाती है तो जैसे वो शक्तियां बढ़ती चली जाती है। इसलिए बाहर से कहीं से हमको शक्ति नहीं मिलेगी, जितना जितना हम आत्मा का मनन करेंगे, आत्म स्वरूप में टिकेंगे और जितना जितना हम ये स्मृति में लाएंगे कि ये सर्व शक्तियां ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में हमें मिली हैं। जैसे लौकिक दुनिया में हम देखते हैं किसी पिता के पास भले 1 करोड़ रुपया है मान लो और उसके 2 बच्चे हैं तो दोनों ही समझते हैं कि मुझे 50 लाख मिलेगा, दूसरा भी समझेगा कि मुझे 50 लाख मिलेगा। अगर हम किसी एक बच्चे को भी कहें कि भाई तुम 49 लाख ले लो तो वो कहेगा क्यों, मेरा हक है, मैं तो पूरा का पूरा लूंगा, मैं अपना हक क्यों छोड़ूं। और अगर कोई मुझे मेरा हक नहीं देगा तो मैं कोर्ट कचहरी के द्वारा भी हक लूंगा। तो लौकिक पिता की संपत्ति पर बच्चे कितनी आंख रखते हैं, एक पैसा भी कम नहीं लेना चाहते, कितना अपने आप को अधिकारी समझते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे मैंने आपको जो ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में शक्तियां दी हैं, क्या आप उन पर भी इतना हक रखते हैं कि शांति पर मेरा हक है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी शांति रूपी शक्ति को नहीं छोड़ूंगा। कोई आए आपको कहे कि चलो थोड़ी सी तो शांति छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए तो अशांत हो जाओ, तो हम क्या कहेंगे, क्या हम उस लौकिक बच्चे की तरह से अपने हक के प्रति इतने जागरूक हैं कि मैं क्यों अपनी शांति छोड़ूं, कुछ भी हो जाए, भगवान का वर्षा है, मुझे मिला है, मैं हकदार हूं, तुम चाहे कुछ भी करो लेकिन मुझे अपनी शांति नहीं छोड़नी, खुशी नहीं छोड़नी, शक्ति नहीं छोड़नी, अपनी पवित्रता नहीं छोड़नी, ये तो मेरे ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बातें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी। लौकिक दुनिया में भी तो धन को चुराने वाले कितने लोग आते। मान लीजिए कोई व्यक्ति सफर कर रहा है और उसके पास 10-20 हजार रुपया है और सामने की सीट पे कोई पॉकेट मार बैठा हो, तो वो उस पॉकेट मार को कभी नहीं कहता कि तुम ट्रेन से नीचे उतर जाओ। वो कहेगा इसको बैठा रहने दो, मैं अपना पैसा संभाल के रखूंगा। और वो अपने पैसे को इतना कस के पकड़ लेता है, नींद आएगी तो भी सोएगा नहीं, इसलिए कि सामने पॉकेट मार बैठा है। पैसे को नहीं छोड़ेगा कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसको पता है पैसे का दुश्मन सामने बैठा है। तो जितना दुश्मन सामने एक्टिव होके बैठा होगा ना, उतना अधिक एक्टिव होकर के वो अपनी चीज को संभालेगा। तो बाबा भी हम बच्चों को कहती हैं कि जैसे दुनिया में पॉकेट मार लोग हैं, ऐसे ही दुनिया में शांति मारने वाले, खुशी मारने वाले, पवित्रता मारने वाले लोग भी हैं। तो आपको क्या करना है? आप ये थोड़े कहेंगे कि ये भाई मेरी शांति को खत्म करने वाले तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी खुशी को छीनने वाले तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसे थोड़े कहेंगे आप। जैसे उसने अपने धन को कस के पकड़ लिया, अभी अपनी खुशी को कस के पकड़ लो, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपनी खुशी नहीं छोड़नी है, शांति नहीं छोड़नी है, शक्ति नहीं छोड़नी है। जब कोई भी बात आती है तो जो ऑपोजिट चीज होती है, सामना करने वाली चीज होती है, उसको मजबूत बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए ठंडी के दिनों में बहुत तेज ठंडी हवा चल रही है और हमने शॉल ओढ़ा है, तो हम क्या करते हैं, उसको कसके पकड़े रखते हैं ना। ऐसे तो नहीं कि हवा आई तो हमने शाल को ढीला छोड़ दिया, चलो भाई तुम उड़ जाओ बेशक। गर्मी के दिनों में मान लो हमारे हाथ में पंखा है और बहुत पसीना गर्मी है, तो हम हाथ वाला पंखा फेंक थोड़े देते, जितनी गर्मी बढ़ेगी हम पंखे से उतना ही ज्यादा हवा करेंगे। तो ऐसे ही अगर सामने अशांति का वातावरण है तो क्या हम अपनी शांति को छोड़ दें कि भाई ठीक है ले जाओ मेरी शांति को। दुख का वातावरण है तो अपने सुख को छोड़ दें, उनके साथ हो जाएं, ठीक है भाई तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हो गया। अपवित्रता का वातावरण है, ऐसी बातें हो रही हैं, तो क्या हम भी अपनी पवित्रता को छोड़ दें कि भाई ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ मिल जाता हूँ। नहीं, ऐसे मौके में तो जो हमारे पास चीज है उसको हमें और मजबूती से पकड़ना होता है। जैसे हमने मिसाल लिया, ठंडी के दिनों में हम हवा के आगे अपनी शॉल को मजबूती से पकड़ लेते, तो ऐसे ही अपवित्र वातावरण में तो पवित्रता को और अधिक मजबूती से पकड़ना है, दुख के वातावरण में तो खुशी को और अधिक मजबूती से पकड़ना है, और अधिक। ऐसे ही अशांति के वातावरण में शांति को और अधिक मजबूती से पकड़ना है, क्योंकि तभी तो प्रत्यक्षता होगी। नहीं तो अगर हम उनके रंग में रंग गए, उन जैसे हो गए, तो ये कमजोरी का प्रतीक होगी, हम इतने कमजोर हैं कि बह गए उनके संग में, हमारे पास शक्ति नहीं थी जो हम उसका सामना कर पाते। एक बार एक माता ने अनुभव सुनाया कि मैं सुबह सुबह अपनी बच्ची को, सोई हुई को उठाती हूँ तो वो उठती नहीं है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, सुबह सुबह ही मेरा मन खराब हो जाता है, उठ उठ ऐसे कहते कहते 10 मिनट खराब हो जाते हैं, वो इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे बिस्तर पे करती रहती है। फिर मैं ऐसे ही बड़बड़ाती हुई गुस्से में नीचे आती हूँ, फिर चाय वाय बनाती हूँ, फिर भी देखती रहती हूँ आई कि नहीं, आई कि नहीं। तो एक दिन मैं आश्रम पे गई तो मैंने एक प्रवचन सुना कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी खुशी को नहीं छोड़ना, जीवन चला जाए बेशक बाबा कहते हैं, लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बिना खुशी के जीवन होना किस काम का, जीवन हो तो खुशी के साथ हो। तो मैंने ये प्रण किया कि मैं अपनी खुशी को नहीं छोड़ूंगी। तो अगले दिन मैंने अपनी बच्ची को एक आवाज दी, वो उठी नहीं जैसे वो हमेशा करती है, तो मैंने सोचा मैं अपनी खुशी को क्यों छोड़ूं, तो मैं नीचे आ गई, चाय वाय बनाने लगी, तो बच्ची ने इंतजार किया कि आज तो मम्मी दोबारा नहीं बोली, तिबारा नहीं बोली, आज तो मम्मी ने गुस्सा भी नहीं किया, क्या हुआ। अब जब कोई गुस्सा करता है तो सोने में मजा आता है, जब कोई गुस्सा ही नहीं करता है तो सोए सोए क्या करेंगे। तो वो दो तीन मिनट के बाद उठ करके नीचे चली गई और देखा उसने माँ तो शांति से अपना किचन में काम कर रही है। तो कहा मम्मी आज आपने गुस्सा नहीं किया। तो माँ ने कहा तू भी जल्दी आ गई, मैंने गुस्सा नहीं किया। तो उसने कहा कि जब आपने गुस्सा नहीं किया तो मुझे सोने में मजा ही नहीं आया। पहले आप थोड़ा झल्लाते थे, फिर मुंह ऐसा ऐसा बनाते थे, तो मैं ऐसे देखती थी कार्टून की तरह आपका मुंह बनता था, तो मुझे बहुत मजा आता था, लेकिन आज मजा ही नहीं आया। तो उस बहन ने सोचा देखा इतने दिनों से मैं गुस्सा करके सोच रही थी कि मैं इसको सुधार दूंगी, पर ये तो नहीं सुधरी, पर मैं जरूर बिगड़ गई। तो हम दूसरों को सुधारने की कोशिश में अपने को बिगाड़ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम सुधरोगे तो दूसरा सुधरेगा, और अगर दूसरे की बिगड़ी हुई स्थिति को देख के तुम भी बिगड़ गए तो दोनों के ही सुधार का रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए हमें अपने मूल्यों को, अपनी शक्तियों को, बाबा के दिए हुए जन्म सिद्ध अधिकार को दूसरे व्यक्ति के स्वभाव संस्कार के कारण छोड़ना नहीं, कुछ भी हो जाए इतनी अपनी स्थिति को मजबूत रखना है, शक्ति को पकड़ के रखना है, स्थिति को मजबूत बना करके रखना है। अगर हमारे में शक्ति नहीं होगी तो जैसे बाबा कहते हैं बच्चे अपनी चलन चेहरे के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करो, तो वो भी नहीं हो पाएगा। बाबा कहते हैं जब शक्ति नहीं होती है ना तो दुनिया में आसक्ति आ जाती है, और जब शक्ति होती है तो आत्मा की आसक्ति खत्म हो जाती है। आसक्ति माना आकर्षण, लगाव। अब बाबा की प्रत्यक्षता तो होगी बेहद के वैराग से, लेकिन हमको राग आ गया, आकर्षण आ गया, तो हम भी उसमें डूब गए। बाबा कहते हैं राग में और वैराग में थोड़ा सा ही अंतर है, एक ही शब्द का अंतर है ना, राग और वैराग। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल जीवन में देखते हैं तो राग में और वैराग में क्या अंतर है, आवश्यकता में और आसक्ति में क्या अंतर है। जैसे मान लीजिए कोई पंछी है और वो रोज आपके घर में दीवार पे आके बैठता है, आप अपने घर के आंगन में एक फल रख दो, पंछी आएगा भूखा है ना, फल को खाएगा और खा करके उड़ जाएगा। तो पंछी ने फल खाया और उड़ गया। फल क्यों खाया उसने, क्योंकि उसकी आवश्यकता है, भूख के समय कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, उसको फल मिल गया, खा के उड़ गया। लेकिन एक दिन हमने क्या किया, एक फल खुला रखा और एक फल पिंजरे के अंदर रख दिया, दो फल रख दिए। अब पंछी अगले दिन आया, जो खुला फल रखा था उसको खा लिया, खा के उसका पेट भर गया, लेकिन पेट भरने के बाद भी वो उड़ा नहीं। जो पिंजरे में फल रखा हुआ है उसको चारों तरफ घूम घूम करके देख रहा है, कभी पिंजरे को चोंच मार रहा है, कभी इधर उधर घूर रहा है। अब कल तो वो फल खा के उड़ गया था और आज क्या हुआ उसको, पेट तो आज भी भर गया ना, पेट तो भर गया ना, जैसे कल भर गया था, पर कल उड़ गया था, आज उड़ा क्यों नहीं, क्योंकि जो दूसरा फल है उसकी उसको आवश्यकता नहीं है और वो उसकी पहुंच में भी नहीं है, लेकिन उसको देख देख करके उसकी आंखें उसमें उलझ गई है। इसको कहते हैं आकर्षण और आसक्ति, इसको कहते हैं राग और लगाव। मिलने कुछ नहीं है, मिलेगा कुछ भी नहीं, और मिल भी जाएगा तो उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि पेट तो भरा हुआ है, लेकिन आंखें उसमें उलझ गई हैं। तो जब कोई भी कर्म इंद्रियां बिना बात के, बिना आवश्यकता के किसी चीज में उलझती हैं, मिल जाए तो कोई प्रयोजन नहीं, और वैसे उसका चिंतन, तो उसको कहते हैं राग आकर्षण आसक्ति। तो बाबा कहते हैं जब आत्मा में शक्ति नहीं होती है, समझ नहीं होती है, वो अपने आप को हटा नहीं सकती है वहां से, तो वो उसमें फंस जाती है। फंस करके कमजोर भी होती है और अपना समय और अपनी एनर्जी को भी नष्ट करती है। इसलिए आसक्ति से बचना है। इसके अलावा एक होता है लोभ। लोभ तो बड़ी चीज है, आसक्ति सूक्ष्म चीज है, लोभ मोटी चीज है जो समझ में आ जाता है। बाबा कहते हैं लोभ भी नहीं रखना है, क्योंकि लोभ से कोई लाभ नहीं है। अगर हमको लोभ रखना है तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का या पुण्य का लोभ रखना है। मैं ऐसे क्या कर्म करूं जिससे मेरा पुण्य बढ़े, मैं ऐसे क्या कर्म करूं जिससे मेरे श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़े, क्योंकि साथ में वही जाएगा ना। अभी तो बाकी जो दुनिया की चीजें हैं उनको हम कितना भी संग्रह करेंगे वो यही रहेंगी, हमारे साथ नहीं जाएंगी। और उनको संग्रह करने में हमारी जो शक्ति लगेगी, संकल्प लगेंगे, उसका भी हमको घाटा हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि एक बार एक राजा था, तो उसने ऐलान किया कि मेरे राज्य में कोई भी दुखी गरीब या कोई भी बहुत ऐसे मेहनत करने वाला नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक मेहनत करे अपनी ताकत से। तो एक दिन बरसात का समय था और राजा ऐसे ही अपने शहर में चक्कर लगा रहा था, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, बहुत बूढ़ा आदमी, बरसात में भी अपने खेत में काम कर रहा था। तो राजा को बड़ा बुरा लगा कि मेरे राज्य में कोई बूढ़ा आदमी और वो भी बरसात में और रात में काम करे, इसको ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी है। तो सुबह उसने अपने कुछ सेवकों को भेजा कि उस आदमी को बुला के लाओ, उसको कौन सी मुश्किल है और उसको जो चाहिए वो दे दो। तो वो आदमी मिलने आया और उसने कहा कि मेरे को बस एक बैल है, लेकिन मेरे को दूसरा बैल चाहिए। तो राजा ने कहा ये क्या बड़ी बात है भाई, इसको दूसरा बैल दे दो। तो उसने कहा नहीं महाराज, मेरा जैसा बैल है ना, मेरे को वैसा का वैसा चाहिए, बिल्कुल वैसा का वैसा चाहिए। तो राजा को आश्चर्य हुआ, भाई ऐसा कैसा बैल है? तो कहा महाराज आप देख के आओ और देख करके उसकी जोड़ी का बैल मुझे दो। तो राजा ने कहा ठीक है। तो उसके साथ गया राजा, तो वो उसके घर में गया, एक कमरा पार किया, फिर दूसरा पार किया, फिर तीसरा पार किया, फिर थोड़ा सीढ़ी नीचे उतरे, उसके बाद बहुत अंधेरा कमरा आया और वहाँ उसने देखा कि एक बैल खड़ा है, लेकिन वो हीरे मोती और माणिक से जड़ा हुआ है। तो उसने कहा देखो मैंने इतने दिनों में एक बैल तो तैयार कर लिया, लेकिन अब मुझे इसकी जोड़ी का दूसरा बैल चाहिए, इसलिए मैं बरसात में भी रात को काम करता हूँ। राजा अगर आप ऐसा बैल मुझे दे सकते हैं तो मैं रात को काम करना छोड़ दूंगा। अब राजा के पास भी ऐसा बैल तो नहीं है ना, ये तो विचित्र प्रकार का बैल है। तो ये क्या है? ये आसक्ति नहीं है, ये लोभ है। और कहती हैं लोभ से कभी लाभ नहीं होता। इतना मिल गया अभी और मिल जाए, इतना मिल गया अभी और मिल जाए, इतनी चीज इकट्ठी हो गई अभी और इकट्ठी हो जाए। थोड़ी छोटी चीजों का भी लोभ होता है, बड़ी चीजों का भी होता है। हीरे मोणिक माणिक मोती का भी लोभ होता है और पाई पैसे की चीजों का भी लोभ होता है। संग्रह करने का जो संस्कार होता है ना, तो वो पाई पैसे की चीज का भी हम संग्रह करेंगे और बड़ी चीज का भी संग्रह करेंगे, जिसकी जैसी कैपेसिटी होगी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे संगम युग बांटने का युग है। अपनी आवश्यकता से अगर अधिक आपके पास है तो उसको बांट करके पुण्य कमाओ, संग्रह मत करो। संग्रह की हुई चीजें तो सबकी सब यही छूट जाएंगी और आपने उनके संग्रह में जो समय शक्ति लगाया वो भी आपका व्यर्थ जाएगा। जैसे आजकल अपन क्या करते हैं, मान लो अपने पास यहाँ पे कोई किताब है बहुत बड़ी और अपने को लंदन भेजनी है, तो क्या करते हैं, ईमेल का बहुत सुंदर तरीका है, ईमेल है, उसके थ्रू अपन क्या करते हैं उन किताब के अक्षरों को लाइट में कन्वर्ट करते हैं और वो तारों के माध्यम से एक मिनट में लंदन पहुंच जाती है, तो कन्वर्ट कर दिया उसको। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आपका अपना जो भी कुछ है उसको ट्रांसफर करो, कन्वर्ट करो। अभी आपके पास जो भी कुछ है वो डायरेक्ट वहां नहीं जाएगा, उसमें बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके पास जो भी कुछ है उसको आपने यहाँ सफल किया तो उसका जो रिजल्ट आपको मिला वो सूक्ष्म रूप में आपके साथ जाएगा। इसलिए उसका सूक्ष्मीकरण करो, जो आपके पास स्थूल चीजें हैं उनको सूक्ष्म रूप में कन्वर्ट कर दो, पुण्य में, दुआओं में, फिर वो चीजें आपके साथ जाएंगी। और इसी तरह से बाबा कहते हैं बच्चे गुणों का दान करो। अब गुणों का दान कैसे करेंगे? गुण कोई दिखने वाली चीज तो है नहीं, अमूर्त चीज है। किसी को नम्रता चाहिए, सत्यता चाहिए, पवित्रता चाहिए, दिव्यता चाहिए, संतुष्टता चाहिए, तो कैसे दान करेंगे? उसके लिए बाबा कहते हैं कर्मों के द्वारा गुणों का दान करो। और बाबा ये भी कहते हैं जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख करके और करेंगे। एक बार एक आश्रम पे एक युगल ने आना शुरू किया तो उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी उनके साथ आने लगे। एक 4 साल की बच्ची थी और दूसरी 2 साल की बच्ची थी। तो 1 साल के बाद हमने उनसे पूछा कि भाई आप आश्रम पे आते हैं तो आपको क्या फायदा हुआ यहाँ आने से? तो उन्होंने कहा बहन जी बहुत फायदा हुआ हमको तो। तो हमने कहा कोई फायदा सुनाओ तो सही। तो उन्होंने कहा हमारे बच्चे दोनों बहुत बदल गए। तो हमने सोचा ये 4 साल के और 2 साल के बच्चे क्या बदल गए भाई, छोटे छोटे बच्चों में क्या परिवर्तन आया होगा? बड़ा तो चलो गुस्सा छोड़ दे, झूठ छोड़ दे, पर छोटे छोटे बच्चों में क्या परिवर्तन आया होगा? तो उसने कहा बहन जी जब ये आश्रम पे नहीं आती थी तो दोनों बच्चियां खेलती थी घर में। तो मैंने पूछा क्या खेलती थी? तो बोला एक मम्मी बनती थी और एक पापा बनती थी, एक भोजन खिलाती थी और दूसरी उसकी थाली को फेंक देती थी, ऐसे ये लोग खेल खेलते थे। तो मैंने पूछा अब क्या हुआ, अब खेलना बंद कर दिया क्या? बोला नहीं खेलना बंद नहीं किया, लेकिन अब इन लोगों ने एक लकड़ी का एक कागज का बॉक्स कहीं से ढूंढ लिया है और एक सफेद कागज जिसके ऊपर कुछ लाइनें लगा ली हैं। तो अब ये क्या करती हैं, जब भी इनको खाली टाइम मिलता है ना तो एक बहन तो वो बॉक्स लेके बैठ जाती है और उसको उंगली से दबाती है, उसमें है नहीं कुछ भी, जैसे टेप रिकॉर्डर को दबाती है ना ऐसे, और दूसरी उससे थोड़ी दूरी पे बैठ जाती है उस सफेद कागज को लेके। तो जैसे ही वो बटन दबाती है दोनों ध्यान में बैठती हैं थोड़ी देर आंख बंद करके, फिर वो एक आंख खोलती है तो उस कागज को हाथ में लेके बोलती है मीठे बत्ते कभी धूत नहीं बोलना, ऐसे ऐसे करके। अब इनका ये खेल हो गया है, थोड़ी देर के बाद वो भी अपना बंद करती है फिर दोनों आंख बंद करके बैठती है। तो मैंने पूछा आपने पहले वाला खेल इनको सिखाया था? बोली नहीं। तो मैंने कहा दूसरा खेल आपने इनको सिखाया था? बोली नहीं। तो मैंने कहा कैसे सीख गए? पहले वाला खेल कैसा था, जैसे पहले घर था, और बाद वाला खेल कैसा है, जैसा बाद में घर बन गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे गुणों का दान करो। तो कैसे करेंगे गुणों का दान? आप अगर बच्चों को ऐसे ही बिठा के कहो बेटा ये खेल छोड़ दो, ये खेल सीखो, ऐसे मत खेलो, ऐसे खेलो, तो बच्चे मानेंगे क्या? बच्चे हों या बड़े हों कोई भी हों, लेकिन जब रोज ही एक चीज को देखेंगे, रोज ही हम किसी को मीठा बोलते देखेंगे तो हम भी कड़वा बोलना भूल जाएंगे। जब रोज ही किसी को बहुत उदार दिल देखेंगे तो हमारी छोटी दिल भी खत्म हो जाएगी। जब रोज ही किसी को दातापन के भाव में देखेंगे तो हमारा भी लेवतापन खत्म हो जाएगा। जब रोज ही किसी को देखेंगे ये तो भूल जाता है, बातों को क्षमा कर देता है, तो हमारे अंदर भी जो अहंकार होगा, बातों को याद करने की आदत होगी, वो भूल जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कर्म करके दिखाओ। जैसे बाबा ने मम्मा ने कर्म करके दिखाया, जैसे हमारी बड़ी दादियों ने, हमारी बड़ी बहनों भाइयों ने हमें कर्म करके दिखाया, तो ऐसे हम भी कहने के बजाय करके दिखाएं। इसलिए कहते हैं रेडियो में और टीवी में अंतर है। ज्यादा प्रभाव किसका है? रेडियो का प्रभाव केवल 15% है और टीवी का प्रभाव 85% है, क्योंकि टीवी दिखाता है और रेडियो केवल कहता है। तो कहने वाले का असर नहीं हुआ, लेकिन दिखाने वाले का असर देखो कितना है, सारी दुनिया उसके प्रभाव में। तो हम बच्चों को रेडियो नहीं बनना है, लेकिन टीवी बनना है। जो भी काम कहें, करें, बोलें, वो हमारे कर्मों के द्वारा सबको दिखाई दे। ऑप्शन